प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृगुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितगरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोत् पूर्णेन्दुसुन्दरोहादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमले मनुष्य को भगवान ने ज्ञान प्रधान बनाया। इसमें जानने की एक विलक्षण शक्ति भगवान ने दी है। ख्याल करके आप सुने, जो अपने में जानने की शक्ति है ना, ज्ञान शक्ति, विवेक शक्ति, वो भगवान की दी हुई है। हमारे को जो शुभ परिस्थिति, अशुभ परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है, वो तो है कर्मों का फल। परंतु विवेक शक्ति है, ये कर्मों का फल नहीं है। कभी आता है भाई बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि कर्मों के अनुसार होता ही होती है, ऐसा आता है। आता तो है, बुद्धि कर्मों के अनुसार होती है, परंतु विवेक शक्ति है वो कर्मों के अनुसार नहीं है। तो विवेक शक्ति क्या है भाई? विवेक शक्ति है एक ज्ञान शक्ति विलक्षण, जिससे हम बुद्धि को भी जानते हैं। मैंने ये बात बताई है कि बुद्धि को जानते हैं हम। बुद्धि को कैसे जानते हैं? कोई बात समझ में आती है कि नहीं आती, कहते हैं कि हम तो समझे नहीं, हमारी बुद्धि नहीं पहुंची। कभी कहते हैं कि हाँ हाँ थोड़ा तो समझ में आया, पूरा समझ में नहीं आया। और पूरा समझ में आने के तो हाँ हाँ ठीक समझ में आ गया। तो बुद्धि के समझ में आ गया वहां तो बुद्धि पहुंची, पूरा समझ में नहीं आया वहां पूरी बुद्धि नहीं पहुंची, और समझ में कुछ नहीं आया वहां बिल्कुल बुद्धि नहीं पहुंची। परंतु बुद्धि के अभाव को आप जानते हैं ना, या मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो बुद्धि से अगर ये आपका ज्ञान है, नहीं तो बुद्धि के अभाव को बुद्धि कैसे बतावे? बुद्धि के अभाव को बुद्धि नहीं बता सकती। तो बुद्धि से परे आपका एक ज्ञान है, ज्ञान वो ज्ञान स्वतः है। उस ज्ञान का मनुष्य जीवन में विशेषता से विकास है, पशु पक्षी वृक्ष लता इनमें भी है। मैडम इनमें इतना ही है कि जिनसे उसका निर्वाह हो जाए बस, अगर ही नहीं है। कारण वो विवेक शक्ति के लिए स्थान नहीं है। जैसे यहां मस्तिष्क है ना, इसमें ज्ञान तंतु है, सामग्री है, तो उससे हम विशेषता से जानते हैं। ऐसी सामग्री वहां नहीं है, इस वास्ते ज्ञान लुप्त रहता है। केवल खाने पीने आदि का ज्ञान होता है, तो वो ज्ञान उनमें भी है। खाद्य वस्तु वो खाएगा, हरे को नहीं खाएगा। जैसे ऊंट कितना ही भूखा हो, भैंस कितनी भूखी हो, क्या आग खा जाएगी और बकरी खा जाएगी? तो उनको पता है कि ये हमारा खाद्य है या न खाद्य है, अखाद्य है, ऐसा ज्ञान है। वो ज्ञान सीखना नहीं पड़ता, और मनुष्य को ये ज्ञान नहीं है। मनुष्य को बहुत ऊंचा ज्ञान दे रखा है। तुलसी या राजा महाराजा लोग तोता में ना रखते थे, कोई चीज खाते तो उनको खिलाते पहले, जहर होता तो वो नहीं खाते, वो खा लेते। उनका ज्ञान उनको विशेषता से, इतना मनुष्य को नहीं। परंतु ये ज्ञान का विकास कितना कर सकता है कि परमात्म तत्व को जान ले और अपना कल्याण कर ले, इतना अधिकार भगवान ने अपनी स्थिति में दिया। तो वो जो विवेक ज्ञान है, वो ज्ञान कर्म का फल नहीं है। थोड़ा सा तर्क से भी विचार करें तो कर्म शुभ किए जाए, अशुभ का त्याग किया जाए, और अशुभ भी शुभ भी किए जाए बिल्कुल सांगोपांग रीति से, तो उसका फल बड़ा अच्छा होता है। तो ज्ञान जिस कर्म का फल है, वो कर्म पहले ज्ञान के बिना कैसे किया? कर्म का फल माने तो मान नहीं सकते। तो कर्म भी किया जाएगा तो ज्ञान पूर्वक समझ पूर्वक किया जाए। वो समझ कहां से आई? वो भगवान से आई है, भगवान की दी होती। इस वास्ते ज्ञान शक्ति केवल भगवान की कृपा से मिली। उस ज्ञान शक्ति का उपयोग करने की स्वतंत्रता मनुष्य को दी। उस ज्ञान को बहुत विशेषता से बढ़ा करके अपना कल्याण कर ले, ये ताकत भगवान ने दी। तो कल अपना प्रसंग चल रहा था कि रुपये पैसे हैं ये साधन मात्र है, साध्य नहीं है, ये ज्ञान है। और साध्य परमात्म तत्व है, सत्य तत्व है, जिसमें ये क्रम बताया था कि रुपयों से सिक्के से बढ़कर तो वस्तुएं हैं, और वस्तुओं से बढ़कर व्यक्ति है ये शरीर, और शरीरों से क्या है बढ़िया के विवेक है, विवेक सत असत नित्य अनित्य, ये विवेक बढ़िया। जितना विवेक अधिक होगा वो मनुष्यों में ऊंचे दर्जे पे चला जाएगा। तो विवेक बढ़िया, और विवेक जहां सत असत का कर लिया जाए वहां सत की प्राप्ति है, वो विवेक का भी फल है। इस वास्ते सबसे बढ़िया सत्य, तो आखिरी दर्जा सत्य उसको प्राप्त करने के लिए मानव शरीर मिला, और मनुष्य ने सब शक्ति ज्ञान रूपये में ही लगा दिया। बड़ा भारी दुरुपयोग किया, रूपयों के ऊपर ही दार मदार सब कुछ, बस ये कमाना हरदम, संग्रह करना और संख्या बढ़ाना, ये बहुत बड़ी भूल है सज्जनों। थोड़ा सा आप विचार करें, इसलिए पैसों के पीछे पड़ गए जिनमें वस्तुओं का भी ख्याल नहीं और व्यक्तियों का ख्याल नहीं। भूख मरे मरते तो मर जाए, हमारे रुपये संग्रह किए हुए खर्च न हो जाए। रुपये है किस लिए? वस्तुओं के लिए, अन्न जल वस्त्र औषध आदि जो उपयोग में आती है उनके लिए पैसे रुपए हैं, और वे हैं मनुष्यों के लिए, व्यक्तियों के लिए। और तो मनुष्य मर जाए तो परवाह नहीं, रुपया नहीं छोड़ेंगे, और रुपयों के लिए अन्याय करते हैं, अनर्थ करते हैं, पाप करते हैं। आज अगर विचार कर देखा जाए तो क्या साधारण आदमी, क्या बड़े बड़े राजकीय अहलकार पैसे के कारण से महान पाप कर रहे हैं? केवल पैसे की दृष्टि से, पैसा मिल जाए, राज्य मिल जाए, भोग मिल जाए, इसके लिए अन्याय पाप को देखते ही कि दुनिया की क्या दशा होगी। पापों में प्रद हो रहे हैं, लोभ में आकर के करे मोह बसंत नर अघ नाना, स्वार्थ रत परलोक नशाना, करे मोह बस नर अग्रा, ये मूर्ता तरह तरह के पाप करते हैं, तरह तरह के अन्याय करते हैं। आपके समाज में मंस का नाम खराब समझा जाता था और मानते ही आज भी, परंतु पैसे के लिए उसको सफलाई भी कर दिया। राम 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 राम, हद हो गई। विदेशों में चढ़ा देते हैं मंस, व्यापार है, महान हत्यारे हत्यारे आठ कसाई महाराज मनु बतलाते। आठों कसाई, कसाई जो पशु खरीद कर देता है, जो पशु को काटता है, जो पशु का मांस निकालता है, जो मांस बेचता है, जो बीच में सौदा करता है, जो खाता है, सब की सब कसाई। ऐसे कसाई काम करने पर भी हिचकते नहीं, रुपया मिलता है बस। रुपया रह जाएगा या ही कसाई पड़ेगा, वो पाप चलेगा साथ। इतना लोभ आ गया, इतना लोभ जो अंधे हो गए, अंधे। एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है, थोड़े से मैं कह देता हूं। एक अच्छे पंडित काशी पढ़ करके आए, बड़े पंडित। ब्याह हुआ, स्त्री आई, वो लड़की भी बड़े पंडित की बेटी थी। तो कुछ दिन के बाद उसने एक प्रश्न कर लिया कि महाराज पाप का बाप कौन है। कि भाई ये तो पुस्तक में आया नहीं, पाप का बाप ही नहीं जानते ना, तो फिर आप क्या पढ़े हो। तो बड़ा दुख हुआ, बड़े पंडित से एक स्त्री पूछे और उसका उत्तर न आवे, तो वहां से चल दिया। काशी जाऊंगा, पंडित से पूछूंगा और पढ़ाई करूंगा। एक वेश्या को पता लगा कि पंडित जी ऐसे जा रहे हैं, उसने सामने जाकर कहा, महाराज कहाँ जा रहे हैं, क्या बात है, एक मेरी स्त्री प्रश्न पूछती है, उसका मेरे को उत्तर नहीं आया, इस बार से जा रहा हूं पढ़ने के लिए काशी, वो तो मैं बता दूंगी। तो बहुत अच्छी बात, हमारे तो कोई बता दे, विद्या लेना है मैं तो। आप विराजो, मैं बताऊंगी। पर बात एक है महाराज, अभी सोमवती अमावस्या आ रही है, कल ही सोमवती अमावस्या है, तो सोमवती अमावस्या के दिन आप मेरे यहां भोजन कर लें। ये तुम्हारे आप बना लेना, सब सामान मेरे घर पर मैं दे दूंगी, बना लेना, रुपये 100 भेंट कर दी। पंडित जी ठीक है, अपने पढ़ा लेंगे शुद्धि पवित्रता से, फिर क्या है। अब पंडित जी नहा धोकर के पहुंचे, उन्हें चौका बर्तन कर साफ लीप करके रसोई तैयार कर दी। अब वह रसोई बढ़ाने लगे तो पंडित जी के 100 रुपये और भेज दिए कि पंडित जी महाराज पक्की रसोई तो दूसरे की बनाई हुई है पाते ही हो, पक्की रसोई बना दूंगी मैं कहूंगा अपने हाथ से। तो अच्छी बात। अब रसोई बना करके महाराज को परोसी तो कहा 25 रुपये 50 रुपये 100 रुपये और ला कर दिया। महाराज के चरणों में रुपये आपके भेंट है, एक प्रार्थना है, मेरे हाथ से ग्रास ले लिया। पंडित ने विचार किया कि रसोई इसी की बनाई हुई, फिर हाथ से लो, अपने हाथ से फर्क क्या पड़ता। तो महाराज तैयार हो गए, ऐसे किया जब मारी थप्पड़ की जोर से, अभी तक होश नहीं हुआ है, एक दाना मत लीजिए, जाओ क्या बात है, क्या आप क्या जानना चाहते थे कि पाप का बाप कौन है, अभी नहीं समझे। ये लोग रहे पैसों में आकर इतने पवित्र पंडित, इतने बड़े विद्वान, आज मेरे हाथ का भोजन करने को तैयार हो गए। मेरे हाथ से क्या है, ये है पाप का बाप। तो पाप का बाप है सज्जनो, त्रिविधम नरक सेदंग द्वारंग नाशनम आत्मना। अपना पतन करने वाले तीन प्रकार का नरकों का दुर्विद्या है, काम क्रोध तथा लोभ, काम क्रोध और लोभ। मुनि विज्ञान धाम करे निमस में सो, ऐसा ये लोग है। उसके बस में होकर के पाप अन्याय करते हिचकते नहीं, और दान पुण्य शुभ काम वो कर देना कर करना देता नहीं, करने देता नहीं। लोग दया के खजाने की कूची लोभ ले गया, बंद हो गया। तो लोभ में आकर के आप अन्याय पुरुषों को ग्रहण करते हैं, पकड़ते हैं, किसी से धन आ जाए बस अन्याय न्याय की परवाह नहीं। और खर्च करने में पैसा खर्च कैसे किया जाए, कमाया हुआ पैसा। एक आदमी था कंजूस, उसको कहा कि लो चीज लियो, बाजार में गए तो रुपये को मुट्ठी में ले गए। ऊसा भाव था उसे, इतना इसमें लगता है, इतना लगता है, सस्ते में दिया नहीं। फिरते फिरते देखा कि रुपया है, तो हाथ उगड़ तो पसीना आ गया, जोर से पकड़ा हुआ था। तो अगर रो मत, तेरे को छोड़ूंगा नहीं। रोता क्यों? रुपया रो पड़ा बेचारा, क्या दे ना पास में रखू। लोभ में आया मनुष्य ऐसा होता। एक आदमी सोया हुआ था, उसको जाग आ गई, अचानक नींद खुल गई। किसी पूछा क्या बात है, ऐसे अचानक कैसे जग गए? कहते जग गए भगवान की कृपा हो गई। क्या कृपा हो गई? कहते मैं वहां बैठा था और एक कवि आ गया, उसने मेरी बड़ी प्रशंसा करी। प्रशंसा करी तो विचार किया क्या करें, तो एक रुपया निकालने लगा मैं, तो रुपया निकाले तो नींद खुल गई। अगर नींद नहीं खुलते रुपया दे देता, कभी हो जाता, पर भगवान ने कृपा की नींद खुल गई, रुपया बच गया। स्त्री ने कहा एक रुपया नींद में जो देती है किए दान, यश हो तो कवि जनन में होती कसू नहान। बताओ एक रुपया नींद में जो देते पिए दान, देवते एक दान दे देते तो कवियों में तो यश हो जाता, हर घर में कुछ हानि बात नहीं। कहते तू बिना विचार बोल रही है, बिना विचारे बात तू कहत रुपया एक, अगर उसका करूं हिसाब तो उपजे दान बदाम अनेक। एक रुपये में आठ अन्नी दो होती है, चौ अन्नी चार होती है, अठ अन्नी बत्तीस होती है, पौ अन्नी चौसठ होती है, आजकल तो सौ होते हैं उन्हें और बढ़िया काम। एक रुपये में सौ पैसे होते, तीन सौ दमड़ी होती, कौड़ी इतनी होती, कितनी कहने कहने लगा एक रुपये के बीच में इतनी दान भरी है। तुम बिने विचार के थे एक रुपया, तुम्हें एक दिखता है बीच में कितना दाम भरा है। तो सपने में भी दे देता तो बड़ी मुश्किल हो जाती, ये लोभ अधिक छा जाता है ना। एक को सपना आया तो उसमें कोई दे रहा था, तो वो लिया नहीं, इतने नींद खुल गया, लाला आंखें मीच के रह जा गया, मिल जाएगी सपने से। ये याद नहीं कि सपना है, आंख खुल गई ना, आंख पीछे मीच गई, ला दे दे दे। ये लोभ के बसी हो तो नानक क्या क्या अनर्थ कर देते, बड़े बड़े पाप कर देते। करे मोह बस नर अघ नाना। सज्जनों आप रुपयों के गुलाम दास मत बनो, रुपयों के अधिपति बनो, लखपति बनो, करोड़पति बनो, लखदास मत बनो। आपने कमाए आप आधिपत्य रखो, रुपये रहे अच्छी बात, चले रहे अच्छी बात। भक्त पर आप कहते हो क्या है, रुपये तो हाथ को मैल है। क्या ठीक है, हाथ का मैल है, कलेजे की ओर है, निगाह करो। बहुत कम आदमी ऐसे हैं, कोई बात है बेटा, लग गया लग गया, खर्च कर दी। ध्यान देकर सुने बात, एक मार्मिक है वास्तव में रुपया वस्तु पदार्थ इनका महत्व नहीं है, महत्व इनके अच्छे उपयोग का, सदुपयोग का महत्व है। अच्छा उपयोग किया जाए तो बड़ी अच्छी बात। शक्ति सामर्थ्य ताकत है, उसका भी उपयोग दूसरों की रक्षा करने में। विद्या पढ़े हो, अच्छे पंडित बन गए, तो उसका भी उपयोग सदुपयोग होना चाहिए, नहीं तो विद्या विवादाय धनम वदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस्य। दुष्ट के पास में विद्या होगी तो क्यों महाराज आप क्या जानते हो बताओ, कोष कितने होते, कोष कौन सा गांव है, गांव नहीं पढ़े आप, अब बता दें तो पास कर देंगे, नहीं बता तो फेल कर देंगे। ये पढ़ने का हुआ नतीजा। साखी शब्द सीख के आसो बने रे भीम, सुधा साधु देकर सम मने सिंह, लड़ने तैयार पढ़े लिखे। ये विद्या का नतीजा ये होना चाहिए। और धन होता है तो घमंड आ जाता है, धनवान और धन चला जाए तो फिर यूं हो जाता। इस बार संतों ने कहा कि ये दौलत है ना, दौलत दो लाख है इसलिए आती मारती यूं कर देती है, इस जब यूं कर देती दो लाख मारती धन दौलत। अब उससे यूं और यूं हो गया तो वो क्या मनुष्य है, धन आ जाए तो वही मौज, न आ जाए तो ये समुद्र की उपमा दी है, आप उड़िए मारा प्रवेशम समुद्र माप प्रविशंति यद्वत तद्वत कामायम प्रविशंति सर्वे, मर्यादा पर रहता है। चातुर्मा से चारों तरफ से नदियां आया करके इकट्ठी होती है, गर्मी जोरों से चलती है तो वो नदियां तो कम हो जाती है, कई बंद हो जाती है, और बड़वाग्नि लगती है भीतर में जो जल को जला रही है, तो बड़ा समुद्र वैसे ही चलता मोह, वैसे ही तरंग उठती वो तो है जो करता। ऐसे संपत्ति धन आ जाए तो न आ जाए तो चली जाए तो अपने क्या फर्क पड़ता, आपके में क्या फर्क पड़ा, ये आने जाने वाली चीज आ गई न आ गई, पर धन को महत्व बहुत दे दिया। धन का उपयोग करो बढ़िया से बढ़िया उपयोग, तो धन होता है मदायो घमंड के लिए, विद्या विवादाय धनं मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय। और कोई ताकत मिल गई, कोई पद मिल गया, अधिकार मिल गया तो दूसरों को दुख देने के लिए खलस्य। ये दुष्ट की बात, दुष्ट को बढ़िया चीज मिले ही तो पयपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, सांप को दूध पिलाया जाए तो भी बढ़ेगा जहर। ऐसे दुष्ट के पास में ये चीज आ जाएगी तो अभिमान घमंड तिरस्कार दूसरों को दुख देना ये बढ़ेगा। साधु जो साधु पुरुष है, सज्जन पुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, उसके पास धन आएगा तो धनम रक्षण में रहेगी, दाना आएगा दूसरों को, दान दान आए और ज्ञान आए। विद्या आएगी तो ज्ञान के लिए, अपने और दुनिया के ज्ञान के लिए, और शक्ति ही परिरक्षण आयो सामर्थ्य की रक्षा करो सबको। ये स्वभाव होता है, वो स्वभाव उदार स्वभाव होता है, घर में अच्छा लगता है, बाहर अच्छा लगता है। कई कई माइयां उदार चित्त वाली होती है, कई की बड़ी कृपण होती है। बाहर से कोई मिठाई आ जाए और किसके हाथ में देने वाले के हाथ में आने पर छोड़ा सब छोड़ा सो राजी हो जाते हैं, बस अब ठीक अपने को मिलेगी। अब और जो कंजू से उसके हाथ हो जाए राम राम राम, बेचारे निराश हो जाते, अब गया है तो खाड़े पर आवेगा, और वो लड्डुओं को रख देगी भीतर, सूख जाएंगे तोड़ना मुश्किल, पत्थर से तोड़कर खाओगे और भीतर पड़ जाएगी इली, खिलाएंगे तो बेचारे छोरे निराश हो जाते, उनके हृदय में धक्का लगता है, कब इसके हाथ में चला गए तो मिलेगा नहीं। थोड़ा से पूछा जाए किसको दिया जाए तो उदार सा देने और सब सब कहते इसको दो इसको दो इसको दे दो समझा इसको दिया और मिला। तो स्वभाव उदारता का है तो छोरे राजी होते दुनिया राजी होती है शास्त्र में पीर में सब जगह उसका आदर होता है और कंजूस कृपण है तो उसकी निंदा होती है। और साथ लेकर क्या जाएगी साथ लेकर जाएगी स्वभाव कृपणता का साथ ले जाएगी कृपणता कंजूसी और वो ले जाएगा उदारता। धन तो ना उसे साथ चले ना उसे साथ उसने धन से अपना स्वभाव शुद्ध बना लिया निर्मल बना लिया तो साथ में चलने की पूंजी बहुत बढ़िया ले ली और कृपण कंजूस बना लिया मक्खी चूस घीत में घी में मक्खी पड़ जाए तो चूस कर फेंगे उसे घी लगा हुआ रह जाएगा पांख के ऊपर तो बड़ा मक्खी चूस है कहते हैं घी चला न जा ऐसे कृपण कंजूस वो क्या देगा जरा जीव तो दस नहीं ले तो जब अड़ुओ खेत को खावे न खावा दे खेत में अड़ुआ होता है वो आप नहीं समझते खेती करने वाले जानते एक पुतला खड़ा कर देते हैं मनुष्य का ऊपर एक हांडी धर करके कपड़ा पहना कर गया ऐसा तो ना वो खाता है ना हांडी को खाने देता ऐसे वो अड़ुआ है समझे खावे न खावा दे उदाहरण रखो भाई भगवान ने धन दिया है विद्या दी है योग्यता दी है पद दिया है अधिकार दिया है तो दूसरों को दो उदारता पूर्वक खर्च करो और धन तो फिर भी खर्च होता है विद्या बुद्धि योग्यता ये तो महाराज बढ़ता ही है पद भी मिल जाए तो किसको सुख मिले किसी को भी सुख मिल जाए किसी को किसी का भला हो जाए तो सज्जनों का ये काम है धन आ जाए तो भी उपकार करो और उपकार करने में केवल धन से उपकार उतना नहीं होता जितना स्वयं जागरूक अकाल पड़ा हुआ है और वहां दान दे दिया पैसा दे दिया सर आफत है आफत एक आफत मिटाई दे दिया सर आफत मिटी ये भी अच्छा न दे उनके अकरणान मंद करना मुझसे बढ़िया चीज है वहां जाकर गांवों की दशा देखे मनुष्यों की दशा देखे गायों की दशा देखे और अपने हाथों से उनको दे और सामने देखे बड़ा भारी पुण्य होता है। यह पुण्य देने मात्र से नहीं होता है अंतःकरण पर असर पड़ता है भूखे आदमियों की क्या दशा है और वे भोजन करते कितने उत्साह से प्रेम से लेते गाय बिचारी कैसे घास खाती देखने से एक अंतःकरण पर असर पड़ता है। पैसा न हो तो कोई परवाह नहीं हाथ से खट करके काम करो बहुत बड़ा पुण्य होगा। सज्जनों पैसों से वस्तु वस्तु से व्यक्ति और व्यक्ति से विवेक वे विवेक पूर्वक काम किया जाए सत्य की प्राप्ति के लिए एक तो वो है एक पैसा ही पैसा बतोरे आरंभ में ही गलती होगी फिर से उपकार करो हित करो दूसरों का हित कैसे हो कल्याण कैसे हो उद्धार कैसे हो सुख कैसे पहुंचे कल्याण कैसे उद्धार कैसे ये हृदय में लग जाए तो ते प्राप्त मामेव सर्वभूत हिते रता प्राणी मात्र के हित में रति हो जाए। अरे आपके पास कुछ गुण है योग्यता है तो उसके द्वारा हित करो ये पैसों से नहीं होता। आपके पास गुण विद्या है तो उस विद्या के द्वारा पारमार्थिक रुचि पैदा करो पारमार्थिक कीर्तन करो पद गाओ लोगों की रुचि हो जाए ये लाभ है वो लाभ रुपयों में नहीं है। परमेश्वर रुपयों में बेच दी पंडिताई भी बेच दी गुण भी बेच दिया सभी रुपयों में बेच दिया राम 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 बदान ये लोग भी समझते हैं क्या रुपयों से ले आएंगे। एक दिन ये संत गए शेठ था बीमार बात करने में शेठ ने कहा रुपयों से सब कुछ मिलता तो संत ने कहा सब कुछ मिलता पर महात्मा नहीं मिलते महात्मा के लिए बुला लू पैसों से नहीं मिलते, पैसों से मिलते वो महात्मा नहीं, महात्मा पैसों से मिलते वो महात्मा नहीं, महात्मा पैसों से मिलते। ये पैसों का आप कहां बोलबाला है, जहां पैसों का महत्व ज्यादा है, जिनके अंतकरण में वे आपके द्वारा खरीदे जा सकते हैं पैसों से, परंतु पैसों से ऊंचे उठे हुए हैं वो पैसों से नहीं खरीदे जाते, तो लाखों दे दो चाहे करोड़ों दे दो, वे खरीद जाते हैं प्रेम से। तीसरा स्नेह हो, सत्य की आपकी निष्ठा हो, सत्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं। संत महात्मा महाराज आपके पास में आ जाए, भगवान संत क्या, संतों के इष्ट आ जाए, भावग्राही जनार्दन, वो भाव शक्ति, वो विवेक शक्ति, वो शक्ति मात्र मनुष्य को भगवान ने विशेषता से दे रखी। अब उसका दुरुपयोग करते हैं, ये बुद्धि का दुरुपयोग करके, और बम निकाले महाराज जिसमें एक स्फोट डाल दिया जाए तो लाखों आदमी मर जाए, ये भी तो बुद्धि से ही निकलता है, तो नाश करने में बुद्धि को लगाया, तरह तरह के यंत्र बनाए जिससे लोग मर जाए जल्दी, परंतु ऐसा नहीं कि जो जी जाए, नहीं मुक्त हो जाए जीव, कल्याण हो जाए जीव का, ऐसी विलक्षण बात की आविष्कृति करते कितना बढ़िया रहता। और हमारे शास्त्रों ने कर रखा, ऋषि मुनियों ने ऐसा आविष्कार कर रखा, वो कुंभ में पड़ा हुआ धन है वो धन लेकर खर्च करवा। संतों ने कहा है कि कंचन खान खुली घट माही, रामदास के तो नहीं, भगवान का दास है उसके लिए कंचन खान खुली है, भीतर में खानी खुल जाती है। सज्जनों बड़ा अपार ज्ञान असीम संपत्ति उनके पास आ जाती है, खूटती नहीं बढ़ती रहती है। कारण क्या है कि भगवान मात्र प्राणी के सुरद है, सुरदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति वृच्छति, भगवान सबके परम सुरद, और जिसके हृदय में सुरदता का भाव आ जाए, सबके हित का भाव आ जाता है, तो भगवान की कृपा शक्ति के साथ उसकी एकता हो जाती है, भगवान का सब खजाना उसका हो जाता है। दुनिया का हित करो, खजाना पड़ा पार असीम, अनंत प्रभु के नाम अनंत, उनकी लीला अनंत, तो उनके खजाना अनंत नहीं है, ज्ञान कितना अनंत अपार पड़ा हुआ, परंतु कोई वितीर्ण करने वाला हो, देने वाला हो खुले हाथों से, तो भगवान के यहां ऐसे आदमियों की जरूरत है, सेवा करे सबकी, क्योंकि पालन शक्ति है ना, सबका पालन करने वाली ताकत, तो उनका उपयोग करे कोई दूसरों के हित के लिए, तो विलक्षण शक्ति उनके पास, भगवान का खजाना हाथ लग जाता है, उस देवी शक्ति के साथ उसका संबंध हो जाता है, वहां से बातें आने लगती है, नहीं नहीं बिना पढ़े बिना सीखे बिना याद किए स्वतः पैदा होने लगती है, जो भगवान के साथ में एकता हो गई वो खजाना खुल गया। ये किससे होता है, सदुपयोग करने से, जितना जानकारी है जितना पैसा उसके उपयोग अच्छे किया जाए, बढ़िया से बढ़िया। बात बहुत विलक्षण है, आप ध्यान कम देते थे, हमें याद है जिस दिन मैंने ये पढ़ा कि उपयोग की महिमा है, जैसे कोई प्रकाश हो जाए जो असर पड़े, वो कितनी मार्मिक बात बता, दरिद्रता का भी सदुपयोग, धनवत्ता का भी सदुपयोग, मूर्खता का भी सदुपयोग, विद्वत्ता का भी सदुपयोग, निरोगता का भी सदुपयोग, रोगीपने का भी सदुपयोग, सदुपयोग करने कल्याण एक होता है, कितनी भी सदुपयोग, परिस्थिति आपकी अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, उसका उपयोग ठीक किया जाए तो उसे कल्याण हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। धनी से धनी आदमी जिस तत्व को प्राप्त कर सकता है, निर्धन से निर्धन उसी तत्व को प्राप्त कर सकता है, कैसी विलक्षण बात, विद्वान से विद्वान जिस तत्व को प्राप्त कर सकता है, मूर्ख से मूर्ख लंथ राज भी अगर चाहे तो उसी परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। आपने कथा सुनी होगा, ध्रुव जी महाराज छोटे थे 5 वर्षों के, भगवान प्रकट हो गए, खटमा समाही मिले साई अचल पाई धामी, 6 महीनों के भीतर अब भगवान प्रकट हो गए, ध्रुव जी के मन में आया कि मैं स्तुति करूं भगवान की। अब करे क्या, पढ़े लिखे नहीं, जानते नहीं, भगवान ने अपना संग सुहा दिया, अब तो महाराज स्तुति करने लगे। बाद विमान प्रसुभता संजीवती अखिल शक्ति धरेस्तना, जिस परमात्मा ने मेरी शक्ति हुई सोती हुई शक्ति को जगा दी, और जो हस्त त्वक शरणादि जितना को उनको जागृति कर दी, बस नहीं जमा, उस भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। तो मूर्ख से मूर्ख हो, पर भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम पियांदिते, मेरे में चित्त लगा मेरा भजन करने वाले हैं उनको वो बुद्धि योग देता हूं जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए। मत्सित सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरीशी, मेरी कृपा से सब विघ्नों को तर जाएगा। और मत प्रसादा जवाब दो होती शाश्वतम पदमव्यम, शाश्वत अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाएगी मेरी कृपा से। भगवान के यहां कौन सी कमी है बताओ, विद्या की, बुद्धि की, योग्यता की, विलक्षणता की क्या कमी है? अरे जब भगत को नहीं देंगे तो भगवान देंगे किसको? अरे बच्चा है, माँ का भूखा मर रहा है, कपड़ा नहीं है, दुख पा रहा है, माँ के पास में अन्न है, वस्त्र सब वस्तुएं है, और माँ उसको नहीं देगी तो किसको देगी? अपने प्यारे बालक को भी नहीं देगी तो माँ के पास चीजें क्या काम आवे? बालक का अगर पालन ना करे तो माँ को मर जाना चाहिए, मर गई वो जीती किस लिए है? बच्चे के लिए जीत। ऐसे भगवान के पास सर्व सामर्थ्य, हम दुख पावे कष्ट उठाओ, तो भगवान को जीता नहीं लेना चाहिए, मर जल्दी तो हम तो दुख पाते रहते हैं, दुनिया में दुख कैसे रह गया भाई? भगवान देखो, भगवान में कितनी विलक्षणता, भगवान के पास में अपार असीम सामग्री पड़ी हुई जिसका पारावार नहीं, और सर्वसमर्थ है वो, और सर्वज्ञ है, सबको जानता है, और परम दयालु है। ऐसे जिसके विशेष ध्यान दे, परम दयालु है, उसके सामने दुखी कैसे रह सकता है? दयालु तो हो परंतु पास में शक्ति नहीं हो तो क्या करे, किसी को दुखी देगा वो ही रोने लग जाए, और क्या? सर्वसमर्थ है, दया करता तो समर्थ भी, सामर्थ्य भी बहुत, सामर्थ्य भी है, दया ही जानता न हो तो भगवान जानते हैं सब, सामर्थ्य भी अपार और दया भी बहुत, फिर भी लोग दुखी हो रहे हैं, क्या बात है? समझ है क्या? उस परमात्मा के रहते हुए तो दुनिया दुखी क्यों हो रही है? दुनिया दुखी हो रही है दुख के लिए, कि दुख थोड़ा है और ज्यादा हो जाए, भगवान के इतने से काम चलाओ, बेटा पोता हो जाए, धन हो जाए, मेरा बार मान हो जाए, पद मिल जाए, है जिसमें तो आफत हो रही है, फिर मिलकर क्या करोगे? इस बात से तुम दुखी होते हो दुख के लिए, दुख की सामग्री और चाहिए महाराज, और भगवान का नहीं कोई जरूरत नहीं, इतने बहुत दुख के लिए दुखी हो रहे हैं। अगर ये दुखी हो जाएगा महाराज, ये संसार की आसक्ति है, कामना है, क्या करें? आप बतावे, जिंदा हो जाए, मस्त हो जाए, बस बस वो ठीक हो रहा है महाराज, अपमान हो जाए उसमें राजी हो जाए, नाचने लगे कि वाह वाह प्रभु बड़ी कृपा कर दी आपने, ये मान बढ़ाई का रोग दूर कर दिया, वाह बड़ी कृपा कर दी, नाचने लग जाए महाराज। भक्तों को ऐसा हुआ, आफत आई है, दुख आया है, राजी हो गए। जो दुख में राजी हो जाते उसके भगवान ऋणी हो जाते, ध्यान देना। आपके यहां नौकर रहता है और वो आपके लिए सब काम करता है, सेवा करता है, सुख पहुंचाता है, और आपके अनुकूल बन जाता है, अपनी अवस्था कैसी रहे, भक्त पर भोजन मिले न मिले, आराम मिले न मिले, मालिक की ही चिंता लग जाए, मालिक की सेवा करे, सज्जनों मालिक बन जाएगा, वो आपको दास बना लेगा। बड़े बूढ़े मुनीम शेर नहीं रहा, थोड़े रह गए। और वो दिलो ध्यान से शेर का भला चाहता है, शेर का काम करता। वे मुनीम जी को पिता के समान मानते हैं। घर में स्त्रियां बाहर नहीं निकलती, मुनीम जी बैठे जैसे कोई साक्षात ससुर हो, ऐसा आदर है उनका मन। और मुनीम जी जो कर दे सो स्वीकार, धमका दे सो लोग ऐसा हो गए नहीं हो गया, बोलते नहीं चू नहीं कर। कारण क्या है कि वे जीवन लगा दिया उस शेर के हित के लिए। ऐसे अनुकूल चलने वाले नौकर है, उस नौकर का मालिक को दास होना पड़ता है। ऐसे ही भगवान की मर्जी में मर्जी मिला है, दुख में भी मस्त रह जाए तो भगवान भी ऋणी हो जाते हैं। क्या दूं मैं, हनुमान जी के ऋणी हो गए। काम करने में हनुमान जी सबसे, राम काज करिवे को आतुर, जैसे जिसको प्यास लग जाए जल के लिए आतुर होता है, भूख लग जाए अन्न के लिए आतुर होता है, माँ कहीं चले जाए बल्कि बच्चा जैसे माँ के लिए आतुर होता है, ऐसे राम काज करीबे को आतुर। तो राम जी ऋणी हो जाओ। राम जी का काम किया, सेना को बुलाए, सब लगाया, सब कुछ काम किया, राम जी का काम किया, राम जी हो गए ऋणी। सुग्रीव से मित्रता करा दी, ऋणी हो गए। तो देखा मैं अकेला ही ऋणी हुआ हूं, सीता जी को खबर मिली। सीता जी को राम जी की खबर मिली, सीता जी ऋणी हो। अरे बेटा तेरे से मैं पूर्ण नहीं हो सकता, अगर अमर गुण नीति सुत हो तुम, अगर अमर हो जा। ऐसे वरदान दिया, असबर दीन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। मां खुश हो गई, मां के ऋणी तो बन गए, रामचंद्र जी भी ऋणी बन गए, मां भी ऋणी बन गई, अब लक्ष्मण जी रह गए बाकी। उनके लगा बाढ़ हुए मूर्छ, तो लक्ष्मण प्राणदाता थे, संजीवनी जाकर चिल्ला दी। अब प्राणदाता के ऋणी नहीं हो गए। राम जी ने समझा हम जंगल में आए हुए तो सब ऋणी हो गए, घरवाले रह गए बाकी। तो हनुमान जी जाकर खबर देते हैं, वहां जिसका तुम नाम लेते हो रात दिन। वे रघुनाथ जी महाराज पधारते हैं, हनुमान जी बोलने में बहुत होशियार थे, थोड़ी सी में बहुत बात कहते। रिपुरण जी थी सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। इतिहास कह देते हैं, लड़ाई हो रही थी, संजीव ले गए, उस समय में समाचार मिले थे, उसका उत्तर रिपुरण जीत गए। देवता लोग यश गा रहे हैं, सीता जी सहित अनुज लक्ष्मण जी भी जी गए, सीता जी को लिया है और आ रहे हैं। इतिहास कह दिया थोड़ा ही, रिपोर्टर जीत सुजस्त गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। ऐसा सुनकर कहा भाई भाई, तेने जो संदेश दिया, इस संदेश से जगह मांगी, देखो विचार कर, कोई है ही नहीं ऐसी चीज, क्या दे नायनता तो उर्ण में तो ही, तुम्हारे उर्ण नहीं हो सकता। अब प्रभु चरित सुना बहू कि बाबा समाचार दिए जैसे तो उर्ण हो ही नहीं सकते, फिर कर्जा क्यों लेते हो, तुम वस्त्र सुनो और कर्जा है नहीं कि रामचरित सुनबे को रसिया, राम जी रसिया तो सीते महाराज, हनुमान जी महाराज को इनाम यही है कि राम जी का नाम सुनो, भगवान की कथा सुनो, यही इनाम है हनुमान जी को जाना। तो दोनों ही आनंद करे, पाया अनिर्वाच्य विश्रामा, विभीषण और मिले तो दोनों ही आनंदित हो गए। तो भगवान की कथा सुनते हनुमान जी महाराज के प्रभु जी ऋणी हो गए। तो भाई मालिक है हनुमान, लिखा है कि धन के तू पत्र लिखा, वो धनिक है भाई, धनक होता है धन के नामा, धनिक नामा अनुगा धन भाई, उसके इतने रुपया इस ब्याज में पाने, वो धन का नाम होता ना, धनिक है वो मालिक, धनिक धनिक तू पत्र लिखा, मेरे से पत्र लिखा ले, तो पत्र कौन निकाले, खत लिखाता है देने को नहीं हो तो देने को तो खत लिखवा, सिर पर खत क्यों लिखावे दे दे। राम जी कहते हैं मैं तुम्हारा ऋण चुकाना चाहता नहीं, तुम्हारा ऋण मैं देना चाहता नहीं। क्योंकि तो दो आदमी देना नहीं चाहते, एक तो जिसके पास में हो नहीं वो कहां से दे बेचारा, एक बेईमान हो धल्ले बस कब जगह देना है ही। योग संकल्प तुमने जो हमारा उपकार किया उसका बदला मैं चुकाना नहीं चाहता। खू महाराज आप में क्या आफत आ गई, क्या कमी आ गई, क्या दरिद्रता आ गई, क्या नीयत खराब हो गई। नरा प्रत्युपकार पाराधी विपत्ति में भी वांछती, तुम्हारे से ऊर्ण कैसे हो। एक कहानी कहते हैं कि आदमी बीमार हो गया, घर में कोई था नहीं, एक मित्र आया मिलने के लिए। अरे क्या बात है भैया, क्या करे, छटपटा रहे, बुखार हो रहा है जोर से, शीतक ज्वर चढ़ा, दाह लग रही है, थोड़ा जल पिलाओ, थोड़ा भाई कुछ उपचार करो। उसने बता सिर दबाया, उपचार किया ठीक तरह से, सेवा करी, अब बुखार उतर गया। अब जाड़े लगे तो कहते तुम्हारा बदला कैसे उतरे, बदला तब उतरे तुम भी बीमार पड़ो और पानी पिलाने वाला कोई रहे नहीं, और फिर मैं आ जाऊं सेवा करूं तो बदला उतरे। ऐसे राम जी कहते हैं तेरे बाप तो तेरे को निकालते घर से, और तुम्हारी स्त्री को ले जाए राक्षस, सहायता करने वाला कोई हो नहीं, फिर ही आकर रक्षा करूं तो बदला उतरे। तो तेरे में ऐसी आफत आवे ही नहीं कभी, मेरे को ऋण ही देना स्वीकार है, पर ऊर्ण होना स्वीकार नहीं। तो राम जी भी ऋणी रह गए, घर वाले सब ऋणी हो गए महाराज हनुमान जी। तो दास होता है, काम करता है, उसके मालिक ऋणी हो जाते हैं। ऐसे भगवान का भजन करे चाहे कुछ नहीं तो भगवान ऋणी हो जाए, उस भगवान को छोड़कर रुपया है राम राम राम। पाप साथ में चलेगा, रुपया रहेगा नहीं कौड़ी एक, जीते जीते खसक जाएंगे, दरिद्र हो जाओगे, घर में दोबारा निकल जाएगा। कहते क्या करे, रुपये नहीं रहे पर पाप जाएंगे नहीं, रुपयों को दया नहीं आएगी, इसने झूठ कपट किया, बेईमानी की, ठगी की, धोखेबाजी की, इनकम टैक्स की, सेल्स टैक्स की, चोरी की, मेरे लिए इतना काम किया, इसको छोड़कर न जाऊं, ऐसी दया आवेगी रुपये को। आप ही एक तरफ से उसकी दया करते हैं, रुपये छोड़ चले जाते हैं। तो सज्जनों वो अकल कब आवेगी। छोटे बालक विचार करते हैं कि हम बड़े होंगे तो ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, तो बड़े हो जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। ये हमारे भाई बहन बड़े कब होंगे, वो अभी तो बच्चों की ही बात कर रहे हैं, ये अक्ल कब आवेगी। अब तो बड़े हो गए, वही खिलौरा वही रिश्ते सब बातें, उसी में लगे हुए हैं। तो ये बड़े हुए हो भाई, सत्संग में आ गए बड़े हो गए। बड़े सत्संग में जाने वालों से बड़ी आशा रखते हैं, भगवान भी, संत महात्मा भी, धर्म और शास्त्र भी आशा रखते हैं कि अच्छे हो जाएंगे। सत्संग में लग रहे हैं अब ठीक हो, और सत्संग की बातें सुन करके भी सुनी अनसुनी कर देते हैं, उन बातों को काम में लाते नहीं। जितनी लाते उतना आप में वो ज्ञान आ गया, उतनी बुद्धि आ गई, उतनी समझ आ गई, और काम में नहीं लाते तो समझ आई नहीं भाई। पढ़ते हुए भी याद ही नहीं है विद्या, तो क्या पढ़ाई है? तो सत्संग के द्वारा इन बातों को समझ करके जीवन शुद्ध बना ले, निर्मल बना ले, तो आपका ही नहीं है औरों का भी उद्धार होगा। संसार में पूरे विष्णु सीखने वाले कईयों को विष्णु सिखा देते हैं, बीड़ी सिगरेट पहने वाले कईयों को सिखा देते, चाय पीने वाले कईयों को, ये माइन चाय पीती छोरा छोरी को पिला पिला कर कर दे बेचारों खराब, अब रह नहीं सकते छोरा। ऐसे ही भजन करने वाला भजन सिखा दे कईयों को, टोली बना लेते हैं, शुभ काम करने वाले भी अपनी टोली बना लेते, अशुभ काम में टोली बना लेते। तो अशुभ बनाने वाले तो बहुत है, थोड़ा सत्संग में लगा दो, गीता में लगा दो, रामायण में लगा दो, भगवान के भजन में लगा दो, कीर्तन में लगा दो, आप लगाओ, नहीं हो तो जहां लगे वहां ले जाओ भाई, इलाज स्वयं करो, न कर सके तो किसी बड़े वैद्य के पास ले जाओ, वहां जाकर बैठा दो, वहां ठीक हो जाएगा। औषधालय में ऐसे सत्संग आदि में लगा दो किसी को भी, चलो भैया आप भी चलो, आप मैं कुछ हम नहीं चलते, देखो तो सही देखा हुआ हमारा। अरे सत्संग अच्छा होता है हम जानते हैं, पैसों की दुकान है उसकी, कहते पैसे नहीं लेते, रुपया लेते, रुपया नहीं लेते, रुपया नहीं लेते, 100 रुपया ला मेरे को दूं, लेता ही नहीं। उनकी ये बहम ही नहीं मिटता कि रुपयों के बिना भी कोई काम करता, 2-4 रुपये नहीं लेते, 500 रुपया दे देख दो, नहीं लेते उनको दिखा दूंगे, जचती नहीं कि बिना रुपया भी कोई काम कर सकता, क्योंकि स्वयं ऐसा ही हाय रुपया कर। इस बात से देखे अपनी आंखों से, चश्मा वही चढ़ा हुआ, समझ नहीं सकते। संतों की गत रामदास दग से लखिए यार नहीं लग सकते, जाड़ नहीं सकते। भगवान के भजन का लोभ लग जाए महाराज, वे जानते हैं, स्मरण तो स्मारे अंतर से भगवान का स्मरण करे, स्मरण करावे, दूजों को भी लगा दे, कितना रस, कितना आनंद, कितनी मस्ती आती है उसमें। वायुमंडल शुद्ध हो जाए, कोई चला जाए तो वहां निर्मल हो जाए। सताम प्रसंग आत्मवीर संविदो भवंती धुत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दाष्पवर्ग वर्तमने श्रद्धा रतिर भक्ति रनोक्रमिष्यति। इसका एक थोड़े रूपांतर में कहा है कि बिनु सतसंग न हरि कथा प्रति ही बिन मोहन भाग और मोह गए बिनु राम पद और हो ही न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना ये चीज मिलती नहीं भाई, कपड़ा है तो कपड़े के बाजार में खरीदो, साग तो साग बाजार में जाओ, ऐसे परमात्मा की चीज तो उस बाजार में जाओ जहां भगवत चर्चा होती है, भगवत गुणानुवाद होता है, रामायण का पाठ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, जप हो रहा है, सत्संगी हो रही है, सद्विचार हो रहा है, वहां जाओ तो पता लगे। एक लड़का मिला था अभी, जवान इंजीनियर पढ़ा हुआ, अच्छा था पढ़ा हुआ आदमी, वो कहता कि मैं माँ की सेवा करता हूं और वर्षों से माँ सत्संग में जाती है तो सत्संग में पहुंचा देता, ऋषिकेश पहुंचा देता, सेवा करता। तो अब के माँ ने कहा कि बेटा तू 3 दिन सुन ले, तो माँ ने कह दिया अरे मेरी रुचि नहीं सुनने के लिए, मेरी रुचि नहीं, परंतु माँ ने कह दी, माँ का तो आदर करेगी बालक, तो कहता था सुना महाराज, 1 दिन तो सुना जिसमें यूं बैठने में मन नहीं लगे, फिर लगने लगा, दूसरे दिन लगा, 3रे दिन तो महाराज कोई सत्संग छोड़ता नहीं, उसने खुद ने कहा वहां धोरे तुम्हें बिना सके क्या पता मिठाई में कैसा मिठास है, चखने से पता लगे ना। ऐसे कई भाई है जो आकर के देखा और सुना और आया रस, अब छोड़ नहीं सकते। अरे हित अनहित पशु पशु पक्षी हो जाना, पशु पक्षी भी हित अनहित जानते, मनुष्य हित अनहित नहीं जाने। अपना हित किस बात में, अपनी शांति आनंद किस बात में हमारा कल्याण है, ऐसे समझ में आएगी तो छोड़ेगा नहीं। इस वास्ते हरि को लात लगाओ, बड़ा भारी उपकार है। आप व्यापार में लगा दो तो बड़ा उपकार, बेचारा रोटी कमाकर खावेगा, और सत्संग में लगा दो सदा के लिए कल्याण हो जाएगा। सत्शास्त्रों में, सद्गुणों में, सदाचारों में, सत्संगति में लगा, और लगाने का समय आपको बहुत हाय रुपया हाय, अच्छी बात, रुपया भी कमाओ, गृहस्थ आश्रम में और रुपया कमाओ। क्यों, गृहस्थ भी गृहस्थों के द्वारा पलते हैं, ब्रह्मचारी भी गृहस्थों के द्वारा पलते हैं, वानप्रस्थ भी गृहस्थों के द्वारा पलते हैं, और साधु संन्यासी बड़े बाबा जी हो जाए पलते तो गृहस्थों के द्वारा ही है। इस बात आप तो माँ बाप हो, ब्रह्मचारियों के माँ बाप, वानप्रस्थों के माँ बाप, संन्यासियों के माँ बाप, बोलो गृहस्थों को छोड़ कहां से आए, संन्यासी साधु त्यागी बाबा जी कहां से आए। माँ बाप पैदा करे पालन करे, तो आप भी पैदा करो तो आप भी पालन करते। हमें एक संत मिले थे, बढ़ने से सत्संग हो रहा था, तो देखो भाई तुम ही तो हमारे माँ बाप और तुम ही हमारे बेटा बेटी, दोनों बात कैसे, माँ बाप भी तुम ही और बेटा बेटी भी तुम ही। माँ बाप जिस रहेगा आप लोगों से, गृहस्थों से हम पैदा हुए, गृहस्थ ही पालन करते उसके रास्ते रहते हैं, इस वास्ते माँ बाप आप हुए। और बेटा बेटी कैसे हमारा, हम बीमार पड़ जाए तो सेवा कौन करे, बेटा बेटी करे और कौन करेगा, ये थोड़ा थोड़ी सेवा करते, इस वास्ते बेटा बेटी तुम ही हो। तो ऐसे गृहस्थ में काम करने वाले वे तो माँ बाप है, इस वास्ते पैसा मत रखो ये अर्थ नहीं है इसका। अरे भाई आपके घरों में चीज होगी वो तो हमारे को मिलेगी, हम मना क्यों करते हैं बताओ, अपने पहलों को कुदाड़ी मारेगा कोई। तो हम कहते हैं लोभ करते, और भीतर में लोभ, खर्च नहीं कर रहे, खा जाऊं करते, ये मत करो। लोभ नरकों का दरवाजा है, रुपया नरकों का दरवाजा नहीं। मुझे विचार लगते थे सदुपयोग करो, धन का अच्छा उपयोग करो तो बड़ी बढ़िया बात, विद्या बुद्धि आपकी जवानी आपका बल आदि है उसका उपयोग करो दूसरों के हित के लिए। सर्वभूत हिते रता पर हित बस जिनके मन माही, तिनक जग दुर्लभ कज नहीं। आपको भगवान ने दिया है तो उसे दूसरों की सेवा करो, सुख पहुंचो, कितने आनंद की बात, कितनी मौज की बात, कितने आनंद। नारायण 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 नारायण, ये बात तुम्हारा घड़ी आ गई समाप्ति की, राम नाम सत्य वाली आ रही है, हरदम नजीक आ रही है, पड़ोसी में बह गई सो आपन में जा रही, पड़ोसी में हो गई अपने में आने वाली है वो। इस बात बड़ी सावधानी से करना है, जो काम कर लो भाई, पता नहीं जीने का कुछ भरोसा नहीं। जय सीताराम 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 जय सीताराम।
जय सीताराम।
सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय सीताराम 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 जय सीताराम
जय Thank you. Jai Shri Man Narayan Narayan Narayan.